नमस्कार भारत, 15 जून दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को देश भर से समर्थन, मरीज बेहाल, कैसे दूर होगा गतिरोध।
आज शाम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है।
ओमान की खाड़ी में टैंकर हमले को लेकर आमने सामने अमेरिका, ईरान, स्वतंत्र जांच के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र। और विवेचना में बात 1970 के दशक के उस चर्चित कोर्ट केस की जिसमें फैसले के बाद देश में लागू हुआ था आपातकाल।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल अब देशव्यापी रुख अख्तियार करती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और केरल, भारत के हर राज्य और हर क्षेत्र के डॉक्टर इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली स्थित दो प्रमुख अस्पतालों एम्स और सफदरजंग में भी ओपीडी सेवाएँ ठप हैं, सिर्फ आपातकालीन सेवाएँ चल रही हैं। डॉक्टरों ने 17 जून को देशव्यापी हड़ताल भी बुलाई है और इन सब में मरीजों को इलाज के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमरीकी सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इसमें ईरान की स्पेशल फोर्स के सैनिक एक तेल टैंकर से विस्फोटक हटाते दिख रहे हैं। अमरीका ने जापान के टैंकर की तस्वीरें भी जारी की हैं जहाँ विस्फोटक नजर आ रहा है, जिसे वीडियो के मुताबिक बाद में हटा दिया गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया है।
Well, Iran did do it, and you know they did it because you saw the boat. I guess one of the mines didn't.
ये ईरान ने ही किया है क्योंकि आप वीडियो में उस नाव को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक विस्फोटक फटा नहीं और शायद इस पर ईरान की पहचान थी। आप देख सकते हैं कि रात में नाव के जरिए विस्फोटक हटाने की कोशिश की जा रही है और विस्फोटक हटा भी लिया जाता है। ये नाव ईरान की थी, नाव में सवार लोग भी ईरान के थे। ईरान कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि हम अंधेरे में चीज़ें ढूंढ निकालने में माहिर हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्विट्जरलैंड की महिलाएं देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल कर रही हैं। उनका कहना है कि वो अपने साथ लगातार होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का मकसद पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले वेतन में अंतर, यौन उत्पीड़न पर उचित कार्रवाई के अभाव और महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की नगण्य संख्या जैसे मुद्दों को सामने लाना है। स्विस फेडरल काउंसिल की सदस्य सिमिनेटा सोमारोगा ने कहा कि तमाम सुधारों के बावजूद आज भी औरतों और मर्दों के बीच असमानता की खाई है जो समाज पर नकारात्मक असर डाल रही है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मैं महिलाओं के वेतन में असमानता और उनके साथ होने वाली यौन हिंसा की बात कर रही हूँ। आज वो दिन है जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में खुले तौर पर दिख रही हैं। ये भी अपने आप में किसी उत्सव से कम नहीं है। चीज़ें बदली ज़रूर हैं, लेकिन अब भी बहुत सी चीज़ों का बदलना बाकी है। मिसाल के तौर पर आज भी औरतों और मर्दों को बराबर वेतन नहीं मिलता। ये घोटाला है। ऐसे में ज़रूरी है कि पुरुष भी महिलाओं का समर्थन करें, क्योंकि ये मांगें सबके लिए हैं, औरतों के लिए, मर्दों के लिए और परिवारों के लिए। यही वजह है कि आज का दिन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये थे स्विस फेडरल काउंसिल के सदस्य सिमिनेटा सोमारोगा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त मिचेल बैचेट अगले हफ्ते वेनेजुएला पहुंचकर वहां का सियासी गतिरोध खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो वहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रमुख विपक्षी नेता ख्वान ग्वाइदो दोनों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वेनेजुएला इस वक्त सियासी और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में इबोला के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद चिंतित है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। सिस्टम बीमार है, ये शिकायत पूरे देश के वो डॉक्टर कर रहे हैं जो बीमारी का इलाज करते हैं। डॉक्टरों ने सिस्टम को लेकर शिकवा सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जाहिर किया। जूनियर डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में बीते सोमवार से आंदोलन जारी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। इन हालात के बीच स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। डॉक्टरों के आंदोलन का असर दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी दिख रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आईएमए के महासचिव डॉक्टर आरवी अशोकन ने बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा को बताया।
The protest is on. The government has said that they are willing to enact an act on central government. We have welcomed that.
आईएमए के महासचिव डॉक्टर आरवी अशोकन कह रहे थे कि हमारा विरोध जारी है, सरकार ने कहा है कि वो कानून बनाने को तैयार है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम औपचारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को 24 घंटे का विरोध होगा। हमारी दो मुख्य मांगे हैं, पश्चिम बंगाल में जारी संकट को युवा डॉक्टरों की संतुष्टि के साथ समाप्त किया जाए, डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कानून लाया जाए, डॉक्टरों की सुरक्षा को कानून बनाकर सुनिश्चित किया जाए। ये मांगे हैं डॉक्टरों की। फिलहाल सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पश्चिम बंगाल में है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली कल कोलकाता में है और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मैंने कुछ वक्त पहले फैसल मोहम्मद अली से बात की।
ये मामला सोमवार से शुरू हुआ था, जबकि यहाँ के एनआरएस अस्पताल है और वहाँ एक मरीज थे जो कि काफी उम्र रसीद थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके परिवार के लोगों से कुछ डॉक्टरों में उनके बीच झड़प हुई और फिर कुछ लोग, जैसे डॉक्टरों का इल्जाम है कि वो वापस गए और काफी बड़ी तादाद में आए और उसमें से डॉक्टरों के साथ हाथापाई हुई, जिसमें एक डॉक्टर को गंभीर रूप से चोट आई, जिनका इलाज यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, जिनसे गवर्नर मिलने के लिए भी गए थे केसरी नाथ त्रिपाठी। तो डॉक्टरों की मांग है कि ये यहाँ एक बहुत ही आम चीज हो गई है कि पेशेंट्स जो है वो कई बार अपना आपा खो लेते हैं, डॉक्टरों को किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती, तो वो मांग रहे हैं कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। कई अस्पताल जो हैं पश्चिम बंगाल के, उसके अलग अलग जो सीनियर्स डॉक्टर्स जो हैं, उन्होंने भी जो है अपना त्याग पत्र जो है वो भेजा है। तो एक तरह की मुहिम चल रही है, हालांकि सबको मालूम है कि उस त्याग पत्र को अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया गया और शायद होगा नहीं, लेकिन 600 से अधिक लोग जो है डॉक्टर्स ने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सामूहिक तौर पर भेजा है अलग अलग अस्पताल।
तो फैसल साहब, अब आप इस आंदोलन को किधर जाता हुआ देख रहे हैं?
फिलहाल जो नजर आ रही है वो जो ये मामला पिछले 4 दिनों से जारी होने के बाद आज 5वां दिन हो जाएगा, अब पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको, वो ये कि शुक्रवार की शाम को करीब 5 जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और वो किसी तरह की बैक चैनल में बात चल रही है ताकि इस पूरे मसले को सुलझाया जा सके। और आज शाम में, शनिवार की शाम को, ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। ऐसा समझा जा रहा है कि इसमें हो सकता है कि इस पूरे मसले का कोई हल निकल जाए, क्योंकि जूनियर डॉक्टर ने अपनी बैठक के बाद 6 मांग रखी थी, जिसमें एक मांग उनकी ये थी कि ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था पिछले दिनों एक अस्पताल में जाके कि बाहरी लोग ये सारा आके हंगामा फैला रहे हैं अस्पताल में, उसके लिए वो किसी तरह के बिना शर्त के माफी मांगे। दूसरी चीज जो हुई वो कि हाई कोर्ट ने एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए किसी तरह के इंटरवेंशन से तो इनकार कर दिया, लेकिन सरकार से जो कहा है कि पिछले दिनों जिन लोगों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ जो अभद्रता की थी या जो उनकी पिटाई हुई थी 2 डॉक्टरों की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसके लिए रिपोर्ट दें एक हफ्ते में। डॉक्टरों को ये शपथ जो दिलाई जाती है डॉक्टरों को, उसकी भी याद दिलाई कि पेशेंट सफर कर रहे हैं तो आप वहां जाएं और उनकी देखभाल करें। यही बात बता देना इसमें जरूरी है कि 5 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं।
जी, तो इस आंदोलन का मरीजों पर कितना असर हो रहा है?
देखिए, मरीजों पे तो बहुत असर हुआ है, हालांकि डॉक्टरों का यह दावा है इमरजेंसी जो है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन ओपीडी नहीं हो रहा है और बाकी जो मरीज हैं वहां हैं, लेकिन बाकी जो रोज दिन अलग तरह के जो दिखाने वाले जो लोग थे, जो सामान्य मरीज, उनकी किसी भी तरह की कोई ओपीडी नहीं हो रही, तो जाहिर है कि वो वापस जा रहे हैं।
ये थे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्कूल की किताबों में बदलाव किया है। विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। शिक्षाविदों की राय है कि बार बार बदलाव करने से छात्र भ्रमित होते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि ये बदलाव जरूरी थे। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कोई साल भर पहले पाठ्यपुस्तकों में कुछ और नजरिया था, अब विद्यार्थी के हाथों में किताबें तो होंगी लेकिन कुछ बदली बदली। कांग्रेस सरकार ने इतिहास, राजनीति और समाज विज्ञान की किताबों की सामग्री में बदलाव किया है। इसमें सावरकर के नाम के साथ जुड़ा वीर अब लोपित हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने पाठ्यपुस्तकों के जरिए अपने विचारों को थोपने की कोशिश की थी, उसे अब ठीक किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बीबीसी से कहा,
था हमने एजीपी रखा है, लेकिन उसको गांधी जी से भी बड़ा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाला बताया गया। मैं समझता हूँ वो गलत था। केवल ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया जानबूझ करके, जो आरएसएस की विचारधारा के पोषक थे, चाहे पंडित दीनदयाल हो चाहे सावरकर जी हो। इतिहास को सही बढ़ाना हमारा सबका कर्तव्य बनता है।
राज्य में 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलें हैं। इन स्कूलों में हर रोज 90 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा की मुराद लेकर दाखिल होते हैं। इसके पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की पाठ्य पुस्तकें चलन में थी, लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने इसमें बड़े बदलाव किए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने पाठ्य पुस्तकों में गांधी का महत्व छोटा करने की कोशिश की थी, लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी इससे इनकार करते हैं।
ऐसा कहीं भी नहीं है, जहाँ महात्मा गांधी जी है वहाँ महात्मा गांधी है। दीनदयाल जी भी उनके समकालीन महापुरुष हैं, इसको तो इनको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने आते ही जिस प्रकार का महाराणा प्रताप के पाठ्यक्रम में सात वीर सावरकर के दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के लगातार जौहर और सती प्रथा को लेकर के कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इनको डर है कि कहीं महापुरुषों के पाठ पढ़ाए गए तो नेहरू जी और इनके परिवार का कद थोड़ा छोटा हो जाएगा।
वो रियासत का दौर था जब महाराणा प्रताप और अकबर में जंग हुई, लेकिन अब एक लड़ाई पाठ्यपुस्तकों के मैदान में लड़ी जा रही है। इसमें हर कोई अपना नजरिया प्रस्तुत करना चाहता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में इतिहास की विभागाध्यक्ष प्रमिला पूनिया कहती है, इतिहास राजनीति का पसंदीदा विषय है, इसीलिए इसमें छेड़छाड़ की जाती है। शिक्षाविद प्रोफेसर राजीव गुप्ता कहते हैं, शिक्षा को ध्रुवीकरण और विभाजन की तरफ ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इतिहास सिलेक्टिव नहीं हो सकता। अगर सावरकर ने जेल यात्रा की है और जेल यात्रा के अंदर उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो भी आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर सावरकर ने माफी मांगी है या माफीनामा लिखा है तो उसकी चर्चा भी इतिहास की पुस्तकों के अंदर होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, मिथ्स को और इतिहास इन सबको एक कर रहे हैं इन पुस्तकों के अंदर।
सियासत जानते हैं कि बाल मन तो कोरी स्लेट होता है, उस स्लेट पर जो इबारत लिख दोगे वही भारत का भविष्य होगा। शायद इसीलिए राजनीति शिक्षा को अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहती है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ओमान की खाड़ी में गुरुवार को दो टैंकरों पर हुए हमले के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका ने कल एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि इसमें ईरान की सेना के जवान विस्फोटक हटाते दिख रहे हैं। ईरान ने आरोपों को गलत बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले की स्वतंत्र जांच पर जोर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधु वासनी। जी सिंधु।
जी वात्सल्य, जैसा हमने अभी खबरों में सुना कि इस मसले को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है, खासकर अमरीका और ईरान के बीच। अमरीका अपनी सेना के जारी किए वीडियो का हवाला देकर कह रहा है कि धमाका ईरान ने कराया और ईरान इसे बार बार नकार रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप भी अपनी सेना के दावे को ही दोहरा रहे हैं। ये मसला कितना महत्वपूर्ण है, इससे ये ऐसे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश भी इस पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। कल उन्होंने कहा था कि ये दुनिया खाड़ी क्षेत्र में बड़ा टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती और आज उन्होंने इस वाकये की एक स्वतंत्र जाँच कराए जाने की मांग की है। गुटेरेश ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसका सच दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हालांकि ऐसी कोई जांच बिठाने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास ही है, तो अभी देखना होगा कि सुरक्षा परिषद ऐसा कोई कदम उठाता है या नहीं। और ये सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां धमाका हुआ वो दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग कहा जाता है, और इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 4% का इजाफा दर्ज किया जा चुका है।
जी, यानी स्थिति गंभीर है और पूरी दुनिया की इस पर नजर लगी हुई है। शुक्रिया सिंधु वासनी। और अब सिंधु वासनी से ही जान लेते हैं कि आज के अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी है। जी
वात्सल्य, आज के लगभग सभी अखबार डॉक्टरों की हड़ताल और उससे संबंधित खबरों से भरे हुए हैं। अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस देखती हूँ तो उसके पहले पन्ने पर कोलकाता के एक अस्पताल के बाहर इंतज़ार करते कुछ मरीजों और उनके परिजनों की तस्वीर दिखाई पड़ती है। और अखबार के फ्रंट पेज पर तीन चार खबरें इसी मसले से जुड़ी हुई हैं। और एक्सप्रेस में आज उन्नी का बनाया कार्टून भी इसी विषय पर है। कार्टून में पश्चिम बंगाल को एक एम्बुलेंस के तौर पर दर्शाया गया है और लिखा है वेस्ट बंगाल टूरिज्म। और कार्टून में एक शख्स कह रहा है कि कोई SEO सबमिट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है,
यानी स्थिति अब एम्बुलेंस तक पहुंच गई है, गंभीर हो गई।
SEO सबमिट से डाइवर्ट होके हम पश्चिम बंगाल और डॉक्टरों की हड़ताल पे सबकी नजरें हैं। अब बात टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें खबर है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आखिरकार बिश्केक में बातचीत कर ली। अखबार लिखता है कि दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई और वो वहाँ लीडर्स लाउंज में मिले। दोनों देशों के नेताओं के बीच ये दुआ सलाम काफी देर से हुई है।
अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल ऑफिशियली इसकी जानकारी दी थी, भारत की तरफ से तो ऐसी कोई बात सामने ज्यादा आई नहीं।
जी, और अभी कल के ही अखबारों में खबरें थी कि मोदी और इमरान ने नजरें नहीं मिलाई, तो अब नजरें मिल चुकी हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं है।
लोगों की नजर इसी पर है।
जी बिल्कुल। और हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर DMRC के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन की चिट्ठी का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त राइड नहीं मिलने चाहिए।
जी, महिलाओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया सिंधु वासनी।
BBC इंडिया बोल।
मोदी सरकार करेगी मदरसों का आधुनिकीकरण और देगी अल्पसंख्यक छात्रों को स्कॉलरशिप। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे के तहत क्या अब मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश में है BJP? और अगर ये कोशिश है तो क्या उसे मिलेगा मुसलमानों का साथ? शनिवार BBC इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1802-7001 पर शाम 7:30 बजे।
BBC इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। विवेचना में बात 1970 के दशक के उस चर्चित कोर्ट केस की, जिसका फैसला आने के बाद देश की राजनीतिक स्थिति बदल गई। ये केस समाजवादी नेता राज नारायण ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ दायर किया था। सुनिए मोहनलाल शर्मा की प्रस्तुति।
जून 1975 की सुबह 10 बजे से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 खचाखच भर चुका था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा पर पूरे देश की नजरें थीं, क्योंकि वो राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी के मामले में फैसला सुनाने जा रहे थे। मामला 1971 के रायबरेली चुनावों से जुड़ा था। ये वो ही लोकसभा चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जबरदस्त कामयाबी दिलाई थी। इंदिरा खुद भी रायबरेली से चुनाव जीती थी। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को 1,11,810 वोटों के भारी अंतर से हराया था। लेकिन राज नारायण अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला था। पर जब नतीजे आए तो राज नारायण के होश उड़ गए। नतीजों के बाद राज नारायण चुप नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, अपील की कि चूंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया है, साथ में वोट खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी मुकदमे में फैसला सुनाने जा रहे थे। जस्टिस सिन्हा ठीक 10 बजे अपने चैम्बर से कोर्ट रूम में आए। सभी लोग उठकर खड़े हो गए। शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि राज नारायण की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने सही पाया है। कोर्ट में बैठे सभी लोग सन्न हो गए। मतलब साफ था, इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त हो रहा था। इधर नई दिल्ली में समाचार एजेंसियों के टेलीप्रिंटर चल रहे थे। एक प्रिंटर प्रधानमंत्री के चैम्बर में था। लगभग 10 बजे यूएनआई के टेलीप्रिंटर पर फ्लैश निकल रहा था, मिसेस गांधी अनसीटेड। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुना चुके थे। राज नारायण की याचिका में जो 7 मुद्दे इंदिरा गांधी के खिलाफ गिनाए गए थे, उनमें से 5 में तो जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया था। फैसले के तहत जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा के 123 के तहत अगले 6 सालों तक इंदिरा गांधी को लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनका बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेश होने का फरमान जारी किया। तारीख तय हुई 18 मार्च 1975। भारत के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मुकदमे में प्रधानमंत्री को पेश होना था। जस्टिस सिन्हा ने भी पेशी की तैयारी की। सवाल यह था कि जज के सामने प्रधानमंत्री और बाकी लोगों का शिष्टाचार कैसा हो, क्योंकि अदालत में सिर्फ और सिर्फ जज के प्रवेश करने पर ही खड़े होने की परंपरा है, पर जब प्रधानमंत्री सामने हो तो। शांति भूषण बताते हैं कि उस दिन किस तरह से अदालत लगी थी।
जिस दिन इंदिरा गांधी आने वाली थी, उस दिन इंदिरा गांधी के कोर्ट में घुसने से पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा कोर्ट में आए और उन्होंने ये अनाउंस किया कि देखिए अदालत में लोग सिर्फ जज के लिए खड़े होते हैं, तो जब प्रधानमंत्री कोर्ट में आए तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। उस समय पासेस से एंट्री उस कोर्ट रूम में थी, 12 पासेस उन्होंने दोनों पार्टी के सीनियर एडवोकेट्स को दिए थे, तो जब इंदिरा गांधी आई तो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन खरे साहब की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो कुछ ना खड़ा हो, तो वो आधे खड़े हो गए। ये भी ना समझा जाए कि खड़े हो गए, ये भी ना समझा जाए कि नहीं खड़े हुए, तो वो सब हम उन सब ने नोटिस किया।
अदालत में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़े। इंदिरा और उनके समर्थकों को अंदाजा लगने लगा था कि अदालत का फैसला उनके खिलाफ जा सकता है, तो ऐसे में जगमोहन लाल सिन्हा को प्रभावित करने की कोशिशें शुरू हुई। शांति भूषण कहते हैं,
इंदिरा गांधी के डॉक्टर थे डॉक्टर माथुर, उनकी रिश्तेदारी थी इलाहाबाद के चीफ जस्टिस जस्टिस डीएस माथुर से, तो जगमोहन लाल सिन्हा ने उसके बहुत बाद मुझे गोल्फ कोर्स में बताया कि एक दिन जस्टिस डीएस माथुर चीफ जस्टिस अपनी पत्नी को लेके जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ घर पे आए जब फैसला सुरक्षित था, और इनसे ये कहा कि भाई इस केस के फैसले के बाद मुझे ऐसा पता लगा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। इशारा था कि अगर तुमने उनके पक्ष में फैसला किया तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाना पक्का है।
लेकिन जस्टिस सिन्हा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में लिखा कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव में भारत सरकार के अधिकारियों और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। जन प्रतिनिधित्व कानून में इसका इस्तेमाल भी चुनाव कार्यों के लिए करना गैर कानूनी था। इन्हीं 2 मुद्दों को आधार बनाकर जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोकसभा के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी हाईकोर्ट जज ने किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का कोई फैसला सुनाया हो। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर से मैंने पूछा, कांग्रेस के खेमे में उस समय क्या चल रहा था?
अब ये जजमेंट जब आ गया तो मुझे याद है मैं जगजीवन राम से मिलने गया, बाबू जगजीवन राम जब वाज द नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि बाबू जी अब क्या होगा। कहते भाई कायदे से तो उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। तो मेरा मतलब, मैंने कहा आप लोग कुछ करेंगे? कहते नहीं, वो किसी में हिम्मत नहीं है, यहाँ से कोई नहीं करेगा। अगर वो स्टेप डाउन करती है तो फिर आपस में झगड़ा होगा कि कौन हो सकता है। ये कि मिसेस गांधी 2 माइंड में थी, एक तो भाई के जजमेंट है, दूसरा कि ये बुरा सा लगेगा, मैं नेहरू की बेटी और एक अदालत ने कहा फिर भी नहीं कहूँगा, तो शी वाज। लेकिन अब संजय को जब ये फीलिंग हुआ, उसने कहा कि माँ की वीकनेस जानता था, कोई रैलीज वैलीज कराओ, तो उसने आदमियों वगैरह को इकट्ठा किया। बंसी लाल हुआ करता था हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, तो उसको कहा, उसने बसों में वहाँ से आदमी लाए और कहा कि देश की नेता इंदिरा गांधी नहीं जाने देंगे, इसे रिज़ाइन नहीं करने देंगे। तो उससे मिसेस गांधी को ये ख्याल हुआ कि लोग तो मुझे चाहते हैं, अब अगर लोग मुझे चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं रहूं।
इस बीच कानून मंत्री गोखले के पास ये सूचना आई कि जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर 20 दिन का स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास का माहौल थोड़ा सुधरना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी की ओर से मशहूर वकील नानी पालखीवाला को बुलाया गया। पालखीवाला ने सलाह दी हाई कोर्ट में ये मामला ढंग से नहीं लड़ा गया, फिर से सारे पेपर्स तैयार किए गए। आखिरकार इंदिरा गांधी की ओर से अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 22 जून 1975। ये वैकेशन जज जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर के सामने आई। इंदिरा गांधी की ओर से पालखीवाला ने बात रखी, राजनारायण की ओर से शांति भूषण अदालत में मौजूद थे। जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि उन पर भी इस केस को लेकर दबाव बनाने की कोशिश हुई।
Accidentally, I was the vacation judge at that time. And Gokhale, my close friend, he telephoned me.
संयोगवश मैं सुप्रीम कोर्ट में सेशन जज था। गोखले उस वक्त देश के कानून मंत्री थे, मेरे करीबी थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, कृष्णा अय्यर, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो जवाब मैंने उन्हें दिया उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मैंने पूछा कि क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ संशय था। वजह साफ थी कि वो मुझ पर दबाव बनाकर स्टे लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द हो गया है और वो इसके खिलाफ अपील कर स्टे लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और अपील करें, न कि घर पर मिलें।
कृष्ण अय्यर ने पालखीवाला से कहा कि आपको जिरह करने के लिए कितना वक्त चाहिए, 3 घंटे जिरह के लिए और 1 घंटे जवाब के लिए। अय्यर ने फैसला लिया, अदालत इस मामले पर फैसला सुनाकर ही उठेगी, और हुआ भी यही, कोई लंच ब्रेक नहीं। शाम 5:30 बजे तक अय्यर मामले की सुनवाई पूरी कर चुके थे और उसके बाद मध्य रात्रि तक अय्यर अपने स्टेनोग्राफर को फैसला लिखाते रहे। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश तो दिया, लेकिन ये पूर्ण स्थगन आदेश न होकर आंशिक था। उनके फैसले के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती हैं, बात भी रख सकती थी, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी तनख्वाह या भत्ते ले सकती थी, लेकिन बतौर सांसद न तो वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकती थी और न ही वोट डाल सकती थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती थी, लेकिन कुछ रोक के साथ। जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए। 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान में हुई। शुरुआत की दिनकर की मशहूर कविता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
आगे गए हैं जिसको रेडियो ने, टेलीविजन ने, कांग्रेस नेताओं ने, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, सब लोगों ने ज्यादा सामने लाया कि जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर रहना ये सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना है, आवश्यक माना है कानूनन, और इसके ऊपर उसने फैसला दिया।
जेपी रैली में बोल रहे थे और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है,
और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है।
मोहनलाल शर्मा की प्रस्तुति। श्रोताओं, हम बता दें कि विवेचना का ये अंक पहले भी प्रसारित हो चुका है। बात वर्ल्ड कप की करें तो कल मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सिंधु वासनी से।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल से शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल अब देशव्यापी रुख अख्तियार करती जा रही है। दिल्ली स्थित 2 प्रमुख अस्पतालों एम्स और सफदरजंग में भी ओपीडी सेवा ठप है। डॉक्टरों ने 17 जून को देशव्यापी हड़ताल भी बुलाई है। अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इसमें ईरान की स्पेशल फोर्स के सैनिक एक तेल टैंकर से विस्फोटक हटाते दिख रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया है और ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है। स्विट्जरलैंड की महिलाएं देश भर में प्रदर्शन और हड़ताल कर रही हैं। उनका कहना है कि वो अपने साथ लगातार होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये प्रदर्शन कर रही हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। शाम के वक्त 7:30 बजे इंडिया बोल में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।